आज है 6 जुलाई दिन सोमवार। स्वागत है आपका, मैं हूँ सुशीला सिंह। ग्रीस की जनता ने जनमत संग्रह में बेलआउट की शर्तों को नकारा, ज्यादातर वोट पड़े ना के हक में। नरेंद्र मोदी आज से रूस समेत 5 मध्य एशियाई देशों की यात्रा पर।
कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में बहुत तेल है और कजाकिस्तान में यूरेनियम भी है। पहले भी भारत की कोशिश रही है कि वहां से तेल और यूरेनियम आयात निर्यात हो।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने एसआईटी को दिए पत्रकार अक्षय सिंह की मौत के जांच के आदेश।
एसआईटी को पत्र लिख रहा हूँ। एसआईटी जिसका गठन हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में माननीय हाई कोर्ट ने किया है और उनसे हम आग्रह कर रहे हैं कि वो भी इस घटना के सभी तथ्यों की जांच करें।
कार्यक्रम में होगी वसुतुल्ला की डायरी और समाचार पत्रों की समीक्षा भी, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार अमल चौधरी से। ग्रीस में बेलआउट पैकेज को लेकर जनमत संग्रह की वोटिंग खत्म होने के बाद लगभग सभी वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। ग्रीस की जनता ने बेलआउट पैकेज को नकार दिया है। गृह मंत्रालय ने आंकड़े जारी कर बताया कि जितने वोट पड़े हैं उनमें से 61% लोगों ने ना के हक में वोट दिया है। वहीं दूसरी तरफ बेलआउट पैकेज का समर्थन केवल 39% लोगों ने ही किया। पोप फ्रांसिस इक्वेडोर पहुँच गए हैं। आज वो इक्वेडोर के ग्वेकिल शहर में लोगों को संबोधित करेंगे। पोप दक्षिणी अमेरिका के सबसे गरीब देशों की 7 दिवसीय यात्रा पर हैं। पोप फ्रांसिस बोलीविया और प्राग का भी दौरा करेंगे। खबरों के अनुसार दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना में जन्मे पोप फ्रांसिस का मानना है कि दक्षिण अमेरिका में लोगों के बीच सबसे ज्यादा सामाजिक असमानता है। फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरेंट फाबियास का कहना है कि परमाणु समझौते के मुद्दे पर गेंद अब ईरान के पाले में है। उन्होंने कहा कि अब यह ईरान के ऊपर है कि वो अनसुलझे मुद्दों पर अपनी प्रतिबद्धता दिखाता है या नहीं। वहीं अमरीकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा कि ईरान के साथ परमाणु समझौते पर 9 दिनों तक चर्चा करने के बाद भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो अभी सुलझ नहीं सके हैं। हालांकि उन्होंने माना कि वार्ता के दौरान वास्तविक प्रगति जरूर हुई है। उन्होंने कहा, पिछले कुछ दिनों में हमारी वार्ता बहुत ही सकारात्मक रही है। मैं ईरान के विदेश मंत्री से इस बात पर भी सहमत हूं कि इस बार हमने जो प्रगति की है वो सबसे ज्यादा है। लेकिन मैं सभी को एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि अभी तक हम उस जगह नहीं पहुंच पाए हैं जहां हमें जाना था। अगर कुछ सख्त फैसले जल्द लिए जाते हैं तो हम किसी नतीजे तक पहुँच पाएंगे, नहीं तो स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। अमरीकी विदेश मंत्री जॉन केरी। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस के साथ जर्मनी के प्रतिनिधि ईरान से बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ईरान अपने संवेदनशील परमाणु गतिविधियों को कम करे ताकि वो परमाणु हथियार ना बना पाए। नाइजीरिया की पुलिस का कहना है कि जोस शहर में 2 बम विस्फोट हुए हैं। पहला विस्फोट एक रेस्टोरेंट के बाहर और दूसरा एक मस्जिद के बाहर हुआ है। खबरों के अनुसार मस्जिद के बाहर हुआ विस्फोट एक मुस्लिम धार्मिक नेता को निशाना बनाने के लिए किया गया था, जिन्होंने कुछ दिनों पहले चरमपंथी संगठन बोको हराम की निंदा की थी। हालांकि भी स्पष्ट नहीं हो सका है कि इस हमले में कितने लोगों की मौत हुई है। बुरुंडी ने देश में चल रहे राजनीतिक संकट को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त किए गए एक राजनयिक को अस्वीकार कर दिया है। सरकार का कहना है कि पिछले माह तैनात किए गए राजनयिक अब्दुल बथिली पक्षपात करते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले तैनात किए गए राजनयिक सईद जीनत ने बुरुंडी की सरकार का समर्थन करने का आरोप लगने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर लाइव सुशीला सिंह के साथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकार अक्षय सिंह की मौत की जांच के आदेश एसआईटी को देने की बात कही है। इस खबर पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले बात करते हैं ग्रीस की। ग्रीस में हुए जनमत संग्रह में आखिरकार जनता ने यूरोपीय देशों की तरफ से बेलआउट पैकेज को प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास पहले ही जनता से इसे नकारने की अपील कर चुके थे। उधर यूरोग्रुप के प्रमुख ने जनमत संग्रह के नतीजों को ग्रीस के भविष्य के लिए अफसोसजनक बताया है। पूरे ब्यौरे के साथ अमल चौधरी।
ग्रीस में बेलआउट पैकेज को लेकर जनमत संग्रह की वोटिंग खत्म होने के बाद गृह मंत्रालय ने आंकड़े जारी कर बताया है कि जितने वोट पड़े हैं उनमें से 61% लोगों ने ना के हक में वोट दिया है। वहीं दूसरी तरफ बेल आउट पैकेज का समर्थन केवल 39% लोगों ने ही किया। जनमत संग्रह के अब तक आए नतीजों का असर यूरो की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ा और उसमें डॉलर और येन के मुकाबले भारी गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले आर्थिक संकट में फंसे ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने पहले ही बेलआउट की शर्तों को नकार दिया था, साथ ही लोगों से भी अपील की थी कि वो ना के ही समर्थन में वोट करें। फैसला लगभग उनके हक में आने के बाद उन्होंने कहा, यहाँ सवाल ये नहीं है कि हमारे लोगों ने यूरोजोन से बाहर होने के लिए वोट दिया है या नहीं, यह सवाल इस बहस से पूरी तरह निकाल दिया जाना चाहिए। ग्रीस के लोगों ने जो प्रतिक्रिया आज दी है उससे उन्होंने साफ कर दिया है कि वो किस तरह का यूरोप चाहते हैं, और साफ है कि हम एक ऐसा यूरोप चाहते हैं जहां एकजुटता और लोकतंत्र हो। अब ग्रीस फिर से अपनी शर्तों पर दोबारा वार्ता शुरू कर सकता है। ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास। हालांकि दूसरी तरफ यूरोपीय संसद के अध्यक्ष मार्टिन शुल्ज ने इसे ग्रीस के लिए एक बुरी स्थिति करार दिया। उन्होंने कहा कि ग्रीस की जनता ने ना के हक में मतदान देकर अपने ऋण संकट पर बातचीत की हालत को और मुश्किल बना लिया है। उन्होंने कहा,
This is a difficult day. It is a broad majority in Greece.
यह एक बहुत ही मुश्किल वक्त है। ग्रीस में अधिकतर लोगों का यह मानना है और उनके प्रधानमंत्री ने भी उन्हें यही भरोसा दिलाया था कि बेलआउट के खिलाफ वोट देकर स्थिति बेहतर हो जाएगी, जो कि मुझे लगता है झूठ है। ऐसे में एक मुश्किल स्थिति खड़ी हो गई है। ग्रीस की जनता ने भले ही इस प्रस्ताव को नकार दिया हो, लेकिन यूरोजोन में मौजूद 18 अन्य देशों का मानना था कि ग्रीस के लिए यह एक सही कदम है। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष मार्टिन शुल्ज के शब्द। वहीं दूसरी तरफ ग्रीस की सड़कों पर कई ऐसे लोग थे जिन्होंने इसके पक्ष और विपक्ष में वोट दिए। ऐसे एक व्यक्ति थे टेलियोस, जिन्होंने इस पैकेज के खिलाफ वोट दिया। उन्होंने बीबीसी को बताया, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। पिछले 6 साल हमारे लिए कितने ज्यादा मुश्किल थे मैं बता नहीं सकता। हमारे पास उम्मीद है और मुझे विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इस पैकेज के समर्थन में वोट किया था। ऐसे ही एक वोटर वालिसिस ने बीबीसी को बताया, निजी तौर पर मैं बहुत ज्यादा आहत हूँ। मुझे लगा था कि यह करीबी मामला होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसे नकारने वालों की संख्या हमसे कहीं ज्यादा थी। मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ दिनों पहले जो भाषण दिया था उसका इस परिणाम पर बहुत असर पड़ा है। ग्रीस गत 30 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का $1.8 अरब का कर्ज चुकाने में विफल हो चुका है।
जनमत संग्रह के नतीजों में लोगों ने बेलआउट की शर्तों को नकारा, ये थे अमल चौधरी। वहीं विपक्षियों का मानना है कि इससे ग्रीस की मुश्किलें कम नहीं होंगी बल्कि और बढ़ जाएंगी। उधर इन अटकलों के बीच कि ग्रीस यूरोजोन से बाहर हो जाएगा, यूरो में डॉलर और येन के मुकाबले भारी गिरावट दर्ज की गई है। तो क्या असर पड़ेगा ग्रीस पर, जानने के लिए मैंने अब से थोड़ी देर पहले बात की ग्रीस मामलों के जानकार और जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर अनिल के सिंह से।
यूनान एक जिस संकट से गुजर रहा है, ये सिर्फ रेफरेंडम की बात नहीं है। रेफरेंडम का जो रिजल्ट आया है ये एक्सपेक्टेड था, काफी लोग इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे। ग्रीस के सामने एक समय अगर वो इसको हाँ भी करता तब भी संकट था, और ना इसलिए कर रहा क्योंकि सिप्रास अभी थोड़े दिनों पहले ही इलेक्शन जीते थे, तो उस समय ये सारी बातें डिस्कस तो हो ही रही थी। और अपनी संप्रभुता पर खतरा कोई भी समाज या संस्कृति तैयार नहीं होती है, देश तैयार नहीं होता इस बात के लिए कि उसकी संप्रभुता से समझौता करे या जो शर्तें रखी जाएं वो अपमानजनक हो। तो मैं देखता हूँ इसको इस तरह से कि संकट का समय है, लोग इसके लिए मानसिक तौर पे तैयार हो चुके हैं कि वह इस संकट से अपने संसाधनों के जरिए निपटेंगे। देखना होगा कि प्रधानमंत्री सिप्रास और उनकी सिरिजा पार्टी किस तरह से आगे यूरोजोन के लेंडर्स के साथ, ट्रायका के साथ बातचीत करके क्या रास्ते निकाल पाते हैं।
ग्रीस की जनता ने बेलआउट की शर्तों को नकारा है इस जनमत संग्रह में, तो अब ये अटकलें भी तेज हो गई हैं कि यूरोजोन से ग्रीस बाहर हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में ग्रीस पर क्या असर पड़ेगा?
इट इज टू अर्ली टू से कि ग्रीस यूरोजोन से बाहर हो जाएगा। हमें मंगलवार तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि जो यूरोजोन मिनिस्टर्स की समिट होने वाली है वो उसका नतीजा क्या निकलता है। पूरे यूरोप के लिए ये आसान नहीं होगा कि ग्रीस बाहर जाए, और ग्रीस ने कभी भी ये इच्छा जाहिर नहीं की है कि वो यूरोजोन से बाहर जाए। अगर किसी सामान्य ग्रीक व्यक्ति से आप बात करेंगे तो वह कभी भी नहीं चाहता कि वो यूरोप से बाहर जाए या यूरो जोन से बाहर जाए, और वो यूरोप को, वो अपने आप को यूरोप का अभिन्न अंग मानते हैं। तो चूंकि सिर्फ ग्रीस पर ही इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि पूरे यूरोप पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो यूरोप के जो दूसरे लीडर्स हैं वो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि स्थितियां और खराब हो। मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं और मैं समझता हूं कि कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा।
जी, यहां ये जानना चाहेंगे कि जो अभी देखा गया है कि यूरो जो है वो डॉलर और येन के मुकाबले गिर गया है, उसमें गिरावट दर्ज की गई है, यहां इसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है?
भारत पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा कोई डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं है ग्रीस के साथ, व्यापार जो है वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही है जो कुछ भी है। और पिछले दिनों में जैसे ही ग्रीस संकट के बारे में बातें तेज हुई हैं तो हमने काफी हलचल देखी है अपने बाजार में, और इनिशियल जर्क जो होता है फाइनेंशियल मार्केट्स में उससे बहुत हद तक अपने आप को तैयार कर लिया है इन्वेस्टर्स ने भी और कॉरपोरेट्स ने भी, तो इसका बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सामान्य एक कुछ दिनों की हलचल हम जरूर देखेंगे लेकिन भारत पर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इम्पैक्ट पड़ेगा जिसका दूरगामी प्रभाव हो।
ग्रीस ने बेलआउट की शर्तों को नकारा, भारत पर नहीं पड़ेगा इसका असर। ये थे जेएनयू में प्रोफेसर अनिल के सिंह। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से रूस और 5 मध्य एशियाई देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। मध्य एशियाई देशों में वे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री रूस के उफा में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे के महत्व पर निखिल रंजन ने बात की जेएनयू में प्रोफेसर और रूस मामलों की जानकार अनुराधा चिनॉय से।
इस दौरे की कई अहमियतें हैं। सबसे पहले एक ब्रिक्स की मीटिंग है रूस में जिसके लिए वो जा रहे हैं, और उसके साथ उन्होंने ये जो 5 मध्य एशिया के देश हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वहाँ भी रुक रहे हैं। तो पहले बहुत सालों से ये जो 5 स्थान हैं उनको भारत की बहुत कोशिश रही है कि वहाँ से रिश्ते बढ़ें और वहाँ के उनके रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन किसी प्रधानमंत्री ने ये नहीं सोचा कि वहाँ जाना चाहिए क्योंकि ये छोटे छोटे देशों को पहले काफ़ी इग्नोर कर लेते थे कि इनके ये हाई लेवल विजिट के लायक नहीं है। एक बात ये है कि इनमें से कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में बहुत तेल है और वहाँ से बहुत फायदा हो सकता है, और कजाकिस्तान में यूरेनियम भी है, और पहले भी भारत की कोशिश रही है कि वहाँ से तेल और यूरेनियम और काफ़ी खाद्य पदार्थ यहाँ वहाँ से आयात निर्यात हो। और दूसरा, ताजिकिस्तान में काफ़ी पहले भारत ने एक बेस, एयर बेस लीज करी थी, और ताजिकिस्तान बिल्कुल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। तुर्कमेनिस्तान से भारत की मतलब इतनी ज़्यादा रिश्ते नहीं रहे, लेकिन तुर्कमेनिस्तान से एक पाइपलाइन, तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन की सोच बहुत पहले से थी लेकिन ये मटेरियलाइज नहीं हुई। तो यदि ये चीज़ें हो जाएं तो ये ट्रिप बहुत सक्सेसफुल हो सकता है, और रूस को तो सभी जानते ही हैं कि भारत और रूस में कितने करीबी के संबंध हैं।
ब्रिक्स देशों का जो सम्मेलन होने वाला है वहाँ पर क्या कुछ हो सकता है इस दौरे के दौरान?
देखिए, ब्रिक्स नेशन में पिछले साल भी फोर्टिलिजा ब्राजील में मीटिंग हुई थी और वहाँ से जो स्टेटमेंट आई थी उसमें 72 पॉइंट्स थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। उसके बाद ये ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को उसकी सोच हुई, उसको फाइनलाइज किया, और फिर हाल में ही चीन में एशिया इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक AIIB जो एक बहुत ही चैलेंजिंग बैंक है जो एशिया डेवलपमेंट बैंक को चैलेंज कर सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वहाँ एशियन कंट्रीज को लोन्स मिल सकते हैं। तो ये ब्रिक्स को तो बहुत तेजी से चल रहा है और ब्रिक्स की मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है भारत के लिए क्योंकि अब भारत को वो डिपेंडेंसी नहीं होगी एशिया डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक पे, वो वहाँ से लोन ले सकता है। और भारत ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है उसमें भारत के करीब 26% शेयर उनके हैं और ये 17% और चीन के 30%। तो चीन और भारत इस बैंक को काफी डोमिनेट कर सकते हैं और चीन के पास इसमें वीटो पावर्स भी हैं और बहुत सारे देश जो मुसीबत में फंसे हुए हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में है, वो इस बैंक से भी पैसे ले सकते हैं।
ये थी जेएनयू में प्रोफेसर अनुराधा चिनॉय। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले से जुड़े एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकार अक्षय सिंह की मौत की जांच एसआईटी से कराने की बात कही है। उधर विपक्षी कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार किसी भी कीमत पर इस घोटाले की जांच सीबीआई से नहीं कराना चाहती है। इस बीच पत्रकार अक्षय सिंह की बहन की इस मांग को मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया है कि विसरा की जांच मध्य प्रदेश से बाहर कराई जाएगी। भोपाल से शूर्य न्याजी की ये रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला शिवराज सिंह चौहान की सरकार के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। शनिवार को पत्रकार अक्षय सिंह की मौत के बाद रविवार को जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन अरुण शर्मा का शव दिल्ली के एक होटल से मिला। अरुण शर्मा व्यापम के तहत हुए फर्जी मेडिकल एडमिशन की जांच का काम कर रहे थे। पुलिस उनकी मौत की वजह की जांच कर रही है। चौतरफा हमले का सामना कर रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने बचाव के लिए पत्रकारों को बताया कि अक्षय सिंह की मौत की जांच एसआईटी से कराई जाएगी। अक्षय सिंह की मौत व्यापम मामले के कवरेज के दौरान हो गई थी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे घोटाले की जांच उन्हीं की वजह से हो रही है।
आज मैं एसआईटी को पत्र लिख रहा हूं। एसआईटी जिसका गठन हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, सेवानिवृत्त जो जो जज थे उनकी अध्यक्षता में माननीय हाई कोर्ट ने किया है और उनसे हम आग्रह कर रहे हैं कि वो भी इस घटना के सभी तथ्यों की जांच करें। जहां तक व्यापम का सवाल है, मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा कि व्यापम के मामले को उजागर करने वाला जैसे ही जानकारी मिली कि कुछ गड़बड़ हो रही है, उसकी जाँच करवाने का फैसला मेरा था। शायद ये बहुत कम बार हुआ होगा। अक्सर अगर कोई जांच होती है तो तत्काल जो घटना होती है उसकी जांच होती है, लेकिन मैंने आगे बढ़ के कहा कि नहीं, इसकी गहराई में जाएं और जितने भी तथ्य सामने लाए एसटीएफ को जांच सौंप के हमने ये कहा।
वहीं विपक्षी कांग्रेस ने भी अपने तेवर और सख्त कर दिए हैं। कांग्रेस पत्रकार अक्षय सिंह की मौत को किसी भी सूरत में स्वाभाविक मानने को तैयार नहीं है। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के मिश्रा ने आरोप लगाया,
अक्षय सिंह जी की मौत जो हुई है वह मौत पूरी तरह संदिग्ध है। सरकार का, जिला प्रशासन का या पुलिस अधिकारियों का यह कहना कि अक्षय सिंह जी की मौत हार्ट अटैक से हुई है पूरी तरह गलत है। मेरी 6 डॉक्टरों से बात हुई है, एक भी डॉक्टर ने यह नहीं कहा है कि हाई कोर्ट में हुई मौत के बाद किसी भी शख्स के मुंह से झाग निकलता। झाग दो परिस्थितियों में निकलता है मेडिकल भाषा में, कि या तो उसने पॉइजन खाया हो या उसे किसी ने पॉइजन दिया हो या फिर कोई मिर्गी का बीमार हो।
कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से व्यापम से जुड़े 13 सवाल भी किए हैं, जिनमें उन्होंने आरोप लगाया है कि जब जांच निष्पक्ष तौर पर हो रही है तो इस घोटाले में आए बड़े नामों को अब तक क्यों बचाया जा रहा है। कांग्रेस ने दावा किया कि अगर मुख्यमंत्री ईमानदारी से इसका जवाब दे दें तो पार्टी सीबीआई जांच की मांग से पीछे हट जाएगी। लेकिन व्यापम के मुद्दे को लेकर अब मध्य प्रदेश में हलचल तेज हो गई है। पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने इस घोटाले पर व्यापम गेट नाम की एक किताब का आज विमोचन किया, जिसमें इस घोटाले के बारे में सिलसिलेवार बताया गया है।
ये थी भोपाल से शूरे न्याजी की रिपोर्ट। और आइए अब सुनते हैं वसुतुल्लाह खान की डायरी।
लगभग 2 महीने पहले जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा कि तालिबान को आईएसआई ने इसलिए प्रमोट किया ताकि उनसे कश्मीर में काम लिया जा सके, तभी से मैंने ये सोच के अपनी टिप्पणी वाली सीट की बेल्ट मजबूती से बांध ली कि भैया ना जाने आगे कितने झटके आने वाले हैं। और फिर मोदी जी के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत दोवाल जी का ये लेक्चर सोशल मीडिया पे किसी ने फोड़ दिया कि पाकिस्तान की ओर से अगर एक और मुंबई हुआ तो फिर बलूचिस्तान भी नहीं संभल पाएगा। इस पर इस्लामाबाद में हाहाकार हो गई। देखा, हम ना कहते थे कि बलूचिस्तान क्यों जल रहा है। और फिर रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने यह झटका दिया कि हम अपने फौजी खामखा क्यों मरवाएं, आतंकवाद का इलाज आतंकवाद ही है, जैसे कांटे से कांटा निकाला जाता है। पिछले हफ्ते बीबीसी ने यह मिसाइल छोड़ा कि अल्ताफ हुसैन की महाजिर कौमी मूवमेंट के 2 ओहदेदारों ने स्कॉटलैंड यार्ड को बताया है कि MQM को भारतीय एजेंसी रॉ से पैसे और लमडों को हथियारों की ट्रेनिंग मिलती है। अभी मैं इन्हीं खबरों से संभल रहा था कि रा के भूतपूर्व चीफ अमरजीत सिंह दौलत ने यह विस्फोट कर दिया कि कश्मीर में हुर्रियत की लीडरशिप का ख्याल आईएसआई के साथ रा भी रखती है। मसलन कभी होटल बुक करवा दिया तो कभी एयरलाइन का टिकट दिला दिया वगैरह वगैरह। और हमने तो मुजफ्फराबाद में बैठे हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सलाउद्दीन के बेटे का भी मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराने में मदद की थी। और उसके बाद राम जेठमलानी ने गोला दाग दिया कि अगर शरद पवार दाऊद इब्राहिम की ये फरमाइश मान लेते कि जब तक मुकदमा चले उन्हें जेल की बजाय घर में रखा जाएगा तो आज दाऊद भाई हमारे दरमियान होते। ये सारे खबरी गोले, मिसाइल और बम एक के बाद एक इतनी तेजी से मुंह पे पड़े हैं कि मुझ जैसों का तो इस संसार पे से ही ईमान उठता जा रहा है। दिमाग इस कदर झुंझुना रहा है कि रात में कई बार हड़बड़ा के बैठ जाता हूं कि अगर कल कला किसी ने बक दिया कि नरेंद्र मोदी को इलेक्शन की आधी फंडिंग चाइनीज सीक्रेट सर्विस से हुई थी, पुतिन CIA के पेरोल पे थे, ओबामा MI6 के पार्ट टाइमर थे, नवाज शरीफ को सऊदी इंटेलिजेंस वजीफा दिया करती थी और परवेज मुशर्रफ रॉ के लिए, हसीना वाजिद ISI के लिए, हमीद गुल ईरानी मुखबिरात के लिए और ममता बनर्जी फ्रेंच सीक्रेट सर्विस के लिए काम करती रहीं, तो मेरा क्या होगा कालिया? उसके बाद ज्यादा से ज्यादा इतना ही होगा ना कि फिर कोई अमरजीत सिंह दौलत पोला सा मुंह बना के अपनी ऐनक की कमानी सीधी करते हुए कहेगा तो क्या हुआ, दुनिया भर में ऐसा ही होता है। और फिर कोई परवेज मुशर्रफ प्रेम चोपड़ा स्टाइल में सिगार के धुएं का गोला हवा में उछालते हुए कंधे झटक कर बताएगा व्हाट अ बिग डील, प्रॉब्लम क्या है, स्पाई एजेंसियों, पॉलिटिशियंस और अंडरवर्ल्ड नेक्सस के धर्रे पे ही तो ये दुनिया घूम रही है, इनमें से एक भी आगे पीछे हो जाए तो संसार का संतुलन ही लसन लग जाए। आज से मेरे बाप की तौबा, जो अब कभी अपने आइडियलिज्म के घोंसले से मुंडी निकाल के किसी के भी बारे में कुछ भी शुभ शुभ सोचूं। जरा कोई पानी तो दे दे, होठों पे पपड़ी जम रही है और हल्की हल्की सर्दी भी लग रही है।
आपको वसुतुल्ला खान की ये डायरी कैसी लगी हमें जरूर लिखेगा। और अब समय समाचार पत्रों की समीक्षा का। अमल, क्या कहते हैं आज के अखबार?
आज मध्य प्रदेश के जो व्यापम घोटाले ने एक बार फिर से हर अखबार के पहले पन्ने पर सुर्खियां बटोर रखी हैं। इसमें जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन की दिल्ली में हुई मौत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से अपने पहले पन्ने पर शामिल किया है। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है व्यापम का आतंक, MP के कॉलेज के डीन की दिल्ली में मौत। और टाइम्स ऑफ इंडिया का शीर्षक है व्यापम घोटाले की जाँच कर रहे डॉक्टर दिल्ली के होटल में मृत पाए गए, IMA ने मौत पर जताई आशंका। द हिंदू लिखता है मेडिकल कॉलेज डीन मृत पाए गए। वहीं इंडियन एक्सप्रेस ने इस घोटाले से जुड़ी एक पूरी सीरीज शुरू कर दी है। वहीं अगर हिंदी अखबारों की बात करें तो यहाँ भी व्यापम घोटाले की खबर ही सुर्खियों में है। जनसत्ता लिखता है व्यापम में एक और रहस्यमय मौत, NBT का शीर्षक है व्यापम 2 दिन 2 मौतें। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की हेडलाइन है व्यापम घोटाला, दिल्ली में डीन की मौत। दूसरी तरफ दैनिक जागरण ने लिखा है कि व्यापम में एक और मौत, और दैनिक भास्कर की भी ऐसी ही हेडिंग है, उसने लिखा है कि अब मेडिकल कॉलेज के डीन की रहस्यमय मौत। और अगर अन्य खबरों की बात करें तो ग्रीस के आर्थिक संकट को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं हिंदुस्तान हिंदी में नरेंद्र मोदी की 6 देशों की यात्रा की खबर को भी लिया गया है। और UP के मुरादाबाद में सांप्रदायिक तनाव की भी इसमें खबरें प्रकाशित की गई हैं।
समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमल। और अब बात खेल की। विंबलडन में कल विश्राम का दिन था तो आज किस किस के बीच होगा मुकाबला, बता रहे हैं लंदन से अपूर्व कृष्ण।
विंबलडन 2015, दिन भर के खेल का लेखा जोखा।
विंबलडन पर लंदन से BBC हिंदी सेवा की विशेष प्रस्तुति में स्वागत है आपका, मैं हूं अपूर्व कृष्ण। विंबलडन के दूसरे हफ्ते में आज से शुरू होगा दुनिया के चोटी के टेनिस खिलाड़ियों के बीच कांटे का संघर्ष। कल विश्राम के बाद आज चौथे राउंड में कई बड़े मैच होंगे। पिछले साल के चैंपियन दुनिया के पहले नंबर के सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को दक्षिण अफ्रीका के 14वीं सीड के खिलाड़ी केविन एंडरसन से खेलना है। जोकोविच अब कड़े मुकाबलों के लिए तैयार हैं।
बिल्कुल
मुश्किल होगा। मेरा मुकाबला केविन एंडरसन से है, वे ग्रास कोर्ट के अच्छे खिलाड़ी हैं और मुझे अपना सबसे अच्छा खेल खेलना होगा। नोवाक जोकोविच के शब्द। 7 बार के विंबलडन चैंपियन स्विस खिलाड़ी रोजर फेडरर को स्पेन के 22वीं सीड के खिलाड़ी रॉबर्टो बौतिस्ता अगूत से खेलना है और ब्रिटेन के लोकल हीरो 2013 के विंबलडन चैंपियन तीसरी सीड के एंडी मरे के सामने होंगे क्रोएशिया के इवो कार्लोविच, जिन्होंने फ्रांस के जो विल्फ्रेड सोंगा को हराकर चौथे दौर में जगह बनाई है। आज चौथी सीड के स्विट्जरलैंड के स्टैन वावरिंका का भी मैच है, उन्होंने इस साल फ्रेंच ओपन फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराया था। क्या इस बार विंबलडन में भी वो कुछ कारनामा करेंगे? मुझे पता है कुछ भी हो सकता है, मगर मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ, अपने खेल के बारे में सोच रहा हूँ। रोज प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अब तक के तीनों मैच बहुत अच्छे रहे। स्टैन वावरिंका के शब्द। महिलाओं में आज सबसे दिलचस्प मैच होगा अमेरिका की विलियम्स बहनों के बीच। सरीना और वीनस दोनों ही 5-5 बार की विंबलडन विजेता हैं। चौथी सीड की 2004 की चैंपियन रूस की मारिया शरापोवा, 5वीं सीड की डेनमार्क की कैरोलाइन वोजनिया की और 6ठी सीड की फ्रेंच ओपन उपविजेता चेक खिलाड़ी लूसी सफारोवा भी खेलेंगी। वहीं पिछले साल की विंबलडन चैंपियन पेत्रा क्वितोवा को तीसरे राउंड में हरा देने वाली सर्बिया की येलेना यांकोविच चौथे राउंड में एग्नियेश्का राडवांस्का से भिड़ेंगी। येलेना अपने पिछले मैच के खेल से उत्साहित हैं।
God knows now anything can happen, you know. I'm just, you know, I couldn't believe it, you know. I lost to Petra last time in.
भगवान जाने, अब कुछ भी हो सकता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। पेत्रा ने आखिरी बार मुझे रोम में हराया था। वैसे मैं इससे पहले उन्हें हरा चुकी हूँ। मगर मैं जानती हूँ वो ग्रास कोर्ट पर अच्छा खेलती हैं, तो यहाँ उन्हें हराने से आगे के मैचों के लिए मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है। उम्मीद है मैं आगे भी अच्छा खेल सकूंगी। येलेना यांकोविच के शब्द। भारतीय खिलाड़ियों में आज लिएंडर पेस, रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा डबल्स मुकाबलों में अपने तीसरे राउंड के मैच खेलेंगे। लिएंडर और सानिया मिक्स्ड डबल्स के भी तीसरे राउंड में पहुंच गए हैं, मगर महेश भूपति अपने डबल्स और मिक्स्ड डबल्स मुकाबलों में पहले ही राउंड में बाहर हो गए। एक और खिलाड़ी पूरव राजा भी डबल्स में पहले राउंड में पराजित हो गए। विंबलडन के 7वें दिन कौन कौन खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में सफल रहे, इसकी चर्चा होगी कल सुबह इसी समय। अपूर्व कृष्ण, बीबीसी विंबलडन।
और खेल की अन्य खबरों के साथ आदेश कुमार गुप्त।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त।
Jackson was involved with the next one. It was a penalty corner, but it was deflected. Gleghorn swept towards goal. Dixon got a touch.
बेल्जियम में खेले गए विश्व हॉकी लीग सेमीफाइनल्स में कल ग्रेट ब्रिटेन ने भारत को एक तरफा रूप से 5-1 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। एक समय तो खेल के 44वें मिनट तक ग्रेट ब्रिटेन ने भारत के खिलाफ 4-0 की बढ़त बनाई हुई थी। भारत के लिए एकमात्र गोल खेल के अंतिम क्षणों में रुपिंदर पाल सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदल कर किया, जबकि विश्व हॉकी लीग सेमीफाइनल्स का फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान बेल्जियम को 1-0 से मात दी। ऑस्ट्रेलिया के लिए विजयी और एकमात्र गोल किरिलो क्रिस ने पेनल्टी कॉर्नर पर किया। उधर पल्लेकल में मेजबान श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां कल मैच के तीसरे दिन स्टंप के समय श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट खोकर 228 रन बना लिए थे। इससे पहले पाकिस्तान की पहली पारी 215 रनों पर समाप्त हुई और श्रीलंका को पहली पारी के आधार पर 63 रनों की बढ़त मिली। श्रीलंका की दूसरी पारी में उनके कप्तान एंजेलो मैथ्यूज ने शानदार बल्लेबाजी की और वो अभी भी 77 रन बनाकर खेल रहे हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश चांदीमल 39 रन बनाकर उनका साथ दे रहे हैं। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज राहत अली ने 58 रन देकर 2 और लेग ब्रेक गेंदबाज यासिर शाह ने 70 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। अब श्रीलंका के पास 291 रनों की बढ़त है और उसके 5 विकेट शेष हैं। उधर चिली ने अर्जेंटीना को पेनल्टी शूटआउट में हराकर कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें गोल रहित बराबरी पर थी। उसके बाद अतिरिक्त समय में भी कोई गोल नहीं हुआ, जिसके बाद पेनल्टी शूटआउट का सहारा लिया गया, जिसमें चिली 4-1 से विजयी रहा। चिली ने पहली बार कोपा कप अपने नाम किया।
खेल समाचार सुना रहे थे आदेश कुमार गुप्त। और कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। ग्रीस में बेलआउट पैकेज को लेकर जनमत संग्रह की वोटिंग खत्म होने के बाद लगभग सभी वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। पोप फ्रांसिस इक्वेडर पहुंच गए हैं। आज वो इक्वेडर के ग्वेकील शहर में लोगों को संबोधित करेंगे। पोप दक्षिणी अमरीका के सबसे गरीब देशों की 7 दिवसीय यात्रा पर हैं। फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरेंट फाबियास का कहना है कि परमाणु समझौते के मुद्दे पर गेंद अब ईरान के पाले में है। उन्होंने कहा कि अब यह ईरान के ऊपर है कि वो अनसुलझे मुद्दों पर अपनी प्रतिबद्धता दिखाता है या नहीं। नाइजीरिया की पुलिस का कहना है कि जोस शहर में दो बम विस्फोट हुए हैं। पहला विस्फोट एक रेस्टोरेंट के बाहर हुआ और दूसरा एक मस्जिद के बाहर। खबरों के अनुसार मस्जिद के बाहर हुआ यह विस्फोट एक मुस्लिम धार्मिक नेता को निशाना बनाने के लिए किया गया था। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे अमल चौधरी। इसी के साथ नमस्कार भारत में आज बस इतना ही। आपसे 8 बजे विश्व भारती में ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाज़त।